Thank you. iscondi, mi difende da acciari e le preoccupate, chi c'è un misciupato, un punstri pratica, acciari e stuperce. Shishima bhakti siddhanta saraswati thakur shila prabhupada ki nama charishila hridas thakur ki jaya prem se kahu shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhar shivasadi gaura bhakta vrinda ki jaya upasthit bhakta vrinda ki jaya upasthit bhakta vrinda ki jaya upasthit bhakta vrinda ki jaya shri shri guru gauranga ki jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Saraswatim Vyasam Tato Jayama Virae Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Om Jnanati Mirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurum Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Tadati Svapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vedantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukhe Devi Pranamami Hari Ubhye Vancha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindhu Bhyaye Vrcha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dhinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtyatya Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna The Mahabharata is Satra Me हम लोग अब तक चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार लाक्षाग्रह से पांडव बचे और फिर ब्राह्मण के घर में एक चक्र ग्राम में रहे और आगे चलकर एक असुर का वध किया फिर द्रौपदी का वर्णन सुनने के बाद व्यासदेव की आज्ञा से वे वहां से चले पांचाल देश की ओर राजा द्रुपद की नगरी में और पिछली बार हम लोग सुन रहे थे कि कैसे वकासुर का वध करने के बाद जब ये लोग चलने लगे तो हिडिंबा से विवाह भी हुआ, फिर वे लोग कुछ ब्राह्मणों से मिले, चित्ररथ को दग्ध रथ बनाया, उनका रथ जला दिया आग्नेयास्त्र से, और फिर उनके कहने पर धौम्य ऋषि को उन्होंने अपना पुरोहित बनाया और उनको आगे रखते हुए फिर वो पांचाल नगरी में आए जहां पर स्वयंवर रचाया जा रहा था। राजा ने शर्त रखी थी पानी में देखकर ऊपर मछली की आंख में तीर मारना था। जब बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया वे लोग कुछ कर नहीं पाए, कर्ण आगे आए और कर्ण ने उस विशाल धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाई और वो निशाना लगाने ही वाले थे कि द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो फिर कर्ण को अपमानित होकर जाना पड़ा और कोई राजा रहे नहीं जो ये कार्य कर सके, कोई क्षत्रिय थे नहीं और अर्जुन से रहा नहीं गया क्योंकि क्षत्रिय जहां भी अपने युद्ध कला अपने कौशल का अवसर पाते हैं उसको प्रकट करते हैं। तो फिर अर्जुन ये मृदंग के ऊपर से हटा, किसने मृदंग बलराम जी का रूप होता है। तो फिर जब सब लोग सोचने लगे कि अब तो कोई क्षत्रिय रहा नहीं तो फिर अर्जुन आए, ब्राह्मण के रूप में थे, हमने सुना कि कई ब्राह्मण उनको रोकने लगे, सोचने लगे कि अरे अरे ये कहीं ब्राह्मण हम सारे ब्राह्मणों की नाक नहीं कटवा दे। लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं आशीर्वाद देना चाहिए, क्या अगस्त्य मुनि ने समुद्र नहीं पिया था, वे भी तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं अपनी शक्ति से, जाने दो इसको। और फिर अर्जुन जाते हैं और तीर चलाते हैं बड़ी आसानी से, उस मछली की आंख को भेद देते हैं और फिर द्रौपदी को जीत कर वो ले जाने लगते हैं तो सारे जो क्षत्रिय होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं और ब्राह्मण सब कहने लगते हैं अर्जुन से अब डरना नहीं घबराना नहीं, हम सब आपके साथ हैं, हम भी युद्ध करेंगे। और अर्जुन उनसे कहते हैं कि नहीं आप खड़े रहिए, हम दो ही काफी हैं। दरअसल जब अर्जुन ने तीर चलाया था तो युधिष्ठिर महाराज को ये शंका हुई कि हो सकता है कि हम लोग पहचान लिए जाएं, क्योंकि पांचों के पांचों रहेंगे, अर्जुन ने तीर चलाया है तो स्वाभाविक है लोग इसको पहचान लें, हमको पहचान लेंगे। तो इसीलिए वो तुरंत वहां से नकुल और सहदेव को लेकर चले गए थे, आगे का उन्होंने नहीं देखा। तो इसलिए युद्ध केवल अर्जुन और भीम ने किया। तो दोनों ब्राह्मण उस ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण तो नहीं, तो वे युद्ध करने लगे और उनके युद्ध कौशल को देखकर जब कर्ण ने देखा तो कर्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम परशुराम हो, क्या तुम इंद्र हो या फिर अर्जुन हो, क्योंकि वो कहने लगे कि इस तरह से युद्ध कोई और मुझसे कर नहीं सकता, जब मैं क्रोध में युद्ध करता हूं तो केवल यही व्यक्ति है जो मेरा सामना कर सकते हैं। तो अर्जुन ने उस समय कहा कि मैं तो एक ब्राह्मण हूं लेकिन मेरे पास शक्ति सारे अस्त्र शस्त्रों की है और उन्हीं शस्त्रों से मैं तुम्हें मारूंगा। तो फिर कर्ण ने युद्ध समाप्त कर दिया। जब कर्ण ने छोड़ दिया, शाल्य ने छोड़ दिया, भीम भी अन्य योद्धाओं को हरा रहे थे, तो फिर कृष्ण के कहने पर, कृष्ण भी वहां उपस्थित थे और जब युद्ध हो रहा था तो कृष्ण बलराम से कह रहे थे कि भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पांडव ही है, ये अर्जुन है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कह रहे थे जैसे उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन है। तो कहने लगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन है और भीम है। तो बलराम जी भी कहने लगे कि बहुत अच्छा है अगर ये पांचों बच गए हों उस अग्नि के द्वारा, अग्नि से, उस लाक्षा ग्रह से। तो फिर ऐसे कृष्ण ने बीच में आकर युद्ध रुकवा दिया। कृष्ण ने प्रार्थना की और सबसे कहा कि देखिए, इस ब्राह्मण ने सही रीति से द्रौपदी को जीता है, एक शर्त रखी गई थी, उसने उस शर्त को पूरा किया है, तो इसे कोई गलत कार्य नहीं है, इसलिए आप लोग युद्ध मत कीजिए। तो फिर सारे क्षत्रिय वैसे ही घबरा चुके थे अर्जुन के कौशल को देखकर, और जब कृष्ण ने कहा कि युद्ध को रोक देना चाहिए तो फिर युद्ध रुक गया। तो इस प्रकार यहाँ कुंती महारानी, उन्होंने देखा कि जब तीन पुत्र तो वापस आ गए लेकिन बाकी दो आए नहीं थे, तो बड़ी घबरा गई और वो सोचने लगी कि शायद ऐसा होगा कि इन दोनों को पहचान लिया होगा, क्योंकि अर्जुन ने तो तीर चला दिया था और अर्जुन ने तीर चलाया है तो अर्जुन के युद्ध कौशल को देखकर पहचान गए होंगे, और फिर सारे क्षत्रियों ने मिलकर मेरे दोनों पुत्रों को मार दिया होगा। ये माँ का प्रेम था, हालांकि उनको आकाशवाणी हुई थी कि ये सारे पुत्र चिरंजीवी होंगे, ये राज्य करेंगे, इनको कोई मार नहीं सकता इत्यादि, लेकिन फिर भी एक माता का हृदय होने से वो प्रेमवश, वात्सल्यवश ये सोचने लगी कि शायद इन दोनों को पहचान कर मार दिया होगा। तो बड़ी चिंता में थी, आए नहीं, सूर्य डूब रहा था, और ऐसे में अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर आए, और उन्होंने हंसी में ही अपनी माता से कहा कि हम आज एक बहुत सारी भिक्षा आपके लिए, देखो हम भिक्षा में आपके लिए क्या लाए हैं। तो कुंती महारानी वैसे भी विचारों में मग्न थी, बड़ी चिंतित थी, उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो पांचों भाई। तो फिर इसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया कुंती महारानी ने, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अर्जुन को विवाह करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने तीर चलाया है और सही दृष्टि में इसने द्रौपदी को जीता है। अर्जुन ने कहा नहीं, जब तक बड़े भाई हैं तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता, पहले उनका विवाह होगा फिर मेरा विवाह होगा। तो फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों से विवाह करेगी। और जब ये सारी बातें चल रही थी तो द्रुपद महाराज ने अपने सैनिकों को भेजा, अपने दूत को भेजा जानने के लिए कि ब्राह्मण कौन है। मैंने तो अपनी पुत्री को दे दिया लेकिन मैं जानता भी नहीं हूं कि ये ब्राह्मण कौन है। तो दृष्टद्युम्न भी आए थे और उन्होंने इनकी बातों को सुना। जब सोते समय ये लोग बातें कर रहे थे युद्ध की, हथियारों की, रथ की, तो उससे दृष्टद्युम्न समझ गए कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वो कभी भी युद्ध की बातें नहीं करेगा, वो वेदों की बातें करेगा, अध्ययन की बात करेगा, शास्त्र की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग युद्ध की बातें कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये क्षत्रिय हैं। देखिए, केवल लोगों की बातों से वो किस प्रकार की बातें करते हैं उनके चरित्र प्रकट होते हैं, इसलिए बोलना ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या बोले। रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले ही श्लोक में ये समझाते हैं, वाचो वेगम, ये जो बोलने का वेग है इसको सबसे पहले वश में करना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं फिर वो हमारे कार्यों में प्रकट होता है। पहले मन में आता है, फिर वाचा में, और फिर कार्यों में। इसलिए बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से हमारा चरित्र प्रकट होता है। मूर्खों की शोभते तावत सभायां वस्त्र वेष्टितः, जो मूर्ख व्यक्ति होता है सभा में बैठता है बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, तो दिखने में लगता है कि अरे बड़ा अच्छा, बड़ा विद्वान है, कितने अच्छे अच्छे वस्त्र अच्छे से पहना है, लेकिन कब तक वो तब तक ही शोभा देता है जब तक अपना मुंह नहीं खोलता। जैसे ही मुंह खोलता है लोग समझ जाते हैं इसके क्या गुण है। तो इसलिए हमें बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए हमें क्या बोलना है। योग के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियों में एक सिद्धि है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि अर्थात बोलने की सिद्धि। अगर कोई 12 वर्ष तक मौन व्रत धारण करता है तो उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है। इसके द्वारा वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। इसको वाक सिद्धि कहते हैं। आप लोग कभी प्रयास कीजिएगा 12 वर्ष तक मौन रहने का। वैसे केवल जब आप लोग प्रवचन में बैठते हैं तो वही समय होता है जब आप लोग मौन रहते हैं, अन्यथा हमारे लिए 12 मिनट भी मौन रहना बड़ा कठिन है। 12 वर्ष तो दूर की बात है। तो कोई अगर 12 वर्ष तक ऐसे तपस्या कर ले, मौन व्रत धारण करे, तो उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो सही दृष्टि में वाक सिद्धि भक्तों के लिए है। प्रभुपाद समझाते हैं कि असली मौन व्रत क्या है। वो कहते हैं कि असली मौन व्रत केवल मुंह बंद कर बैठना नहीं है, न बोलना नहीं है। वो कहते हैं असली मौन व्रत है केवल कृष्ण कथा को कहना, केवल कृष्ण के विषय में कहना, उनकी लीलाओं का गुणगान करना, ये असली मौन है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे मौन व्रत का पालन करता है तो स्वाभाविक है कि उसके द्वारा बोले गए हर वाक्य सत्य होता है, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है और उनके विषय में उनसे संबंधित हर चीज सत्य है। तो इसलिए भक्तों को 12 वर्ष तक मौन धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए। उन्हें तो केवल कृष्ण के विषय में बोलना चाहिए जिससे वे केवल सत्य को प्रकट करें। तो इसीलिए बोलना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार पांडव सब आपस में जब चर्चा कर रहे थे कि कौन विवाह करेगा, युधिष्ठिर ने भी अर्जुन ने कहा बड़े भाई का होना चाहिए, युधिष्ठिर ने कहा नहीं हम पांचों से होगा। तो फिर जब उनकी बातों को सुनकर दृष्टद्युम्न ने जाकर बतलाया कि ये लोग क्षत्रिय हैं, इनके में गुण से पहचान गया, उनकी बातों से पहचान गया। एक और कथा बताई जाती है इस विषय में अकबर और बीरबल की। एक बार एक कोई बाहर से व्यक्ति आया, वो बहुत सारी भाषाएं बोलता था, तो वो किस स्थान का है ये पता नहीं चल रहा था। गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से है, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो उसने चुनौती दी कि आपके जितने भी दरबार में लोग हैं ये बताएं मुझे कल तक कि मैं कौन से प्रदेश से हूं। तो फिर बीरबल से कहा गया कि भाई इतनी भाषाएं, वो भी एकदम बड़ी अच्छी तरह से हर भाषा बोल रहा था कि पता नहीं चल रहा था। साधारणतः ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रदेश का है तो अगर दूसरी भाषा भी बोलेगा तो पता चल जाता है। जैसे अगर कोई बंगाल का व्यक्ति हिंदी बोलता है तो उसको सुनते ही पता चल जाता है ये बंगाल से है। कोई गुजरात का व्यक्ति अगर बोलता है तो उसकी भाषा से पता चल जाता है ये गुजरात का। लेकिन ये व्यक्ति इतनी भाषाएं बोल रहा था और इतनी दक्षता से कि पता नहीं चल रहा था। तो फिर बीरबल ने कहा ठीक है कल तक बता देंगे। तो रात्रि के समय जब वो सो रहा था तो बीरबल ने सोते हुए उस व्यक्ति के ऊपर जोर से पानी डाल दिया और वो हड़बड़ा कर उठ पड़ा और अपनी मातृभाषा में जोर जोर से गालियां देने लगा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, रात में चले गए। अगले दिन सुबह वो आया दरबार में, चुनौती दी। तो बीरबल ने कहा हाँ आप इस प्रदेश से हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कैसे पता चला। तो देखिए बोलने से सब पता चल जाता है। तो फिर जब जाकर द्रुपद को पता चला कि ये क्षत्रिय हैं तो उन्होंने तुरंत भेजा, अपने रथ भेजे, अपने दूतों को भेजा कि उनको लेकर आओ। और फिर दूतों ने जाकर वहां से कहा कि आप कृपया अपनी पहचान बतलाइए, आप कौन हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, बड़ी चिंता है द्रुपद महाराज को। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि हाँ स्वाभाविक है चिंता तो होनी चाहिए, अपनी पुत्री को उन्होंने दिया है, तो तुम जाकर उनसे कहो कि उनकी इच्छा पूरी हुई है। दरअसल युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि द्रुपद की एक इच्छा थी बड़े समय से हृदय में कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो, वो चाहते थे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जाकर कहो कि उनकी हृदय की इच्छा पूरी हुई है। खैर, तब तक रथ आए थे तो फिर सारे के सारे पांडव, कुंती महारानी और द्रौपदी के रथों में बैठकर द्रुपद महाराज के महल में आए। द्रुपद महाराज ने वहां बड़ी व्यवस्था की थी, उनके भोजन की व्यवस्था और उनके लिए बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित किया था जहां वो बैठने वाले थे। वहां उसमें कई अस्त्र शस्त्र थे, हथियार थे और बाकी चीजें भी थी, अध्ययन के लिए शास्त्र इत्यादि रखे हुए थे। द्रुपद महाराज उनके आचरण से देखना चाहते थे कि ये कौन है। अभी उन्होंने केवल शब्दों से सुना था, अब आचरण से देखना चाहते थे। तो जब उन्होंने द्रौपदी और कुंती महारानी तो अंदर चली गई, लेकिन जब पांच पांडवों को भोजन कराने के लिए बिठाया तो बड़े राजसी ठाट बाट के उन्होंने आसन लगाए उनके लिए, बड़े विशाल, जो केवल राजाओं राजकुमारों के लिए लगाए जाते हैं। और वो देख रहे थे कि क्या वो इस पर आराम से बैठते हैं, और उन्होंने देखा कि पांडव बड़े आराम से चल के गए और बैठ गए, जैसे उनको बहुत पहले से आदत है इस पर बैठने की। और उन्होंने आराम से भोजन लिया। भोजन लेने के बाद द्रुपद महाराज दूर से देख रहे थे और पांडव घूमने लगे और बाकी सारी चीजों को छोड़ते हुए सीधा हथियारों के पास गए, तलवार को देखने लगे, तीर कमान को देखने लगे। और जिस प्रकार से वो उठा रहे थे उससे पता चल रहा था कि पहली बार नहीं उठा रहे हैं, अभ्यास है नहीं सबका उठाने का। जैसे अगर हम लोग उठाने जाए तो गदा पड़ी हो या तलवार पड़ी हो तो हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे उठाना है, प्रयास भी करेंगे तो शायद उठ नहीं पाएगी ठीक से। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उठाया, द्रुपद महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, एक क्षत्रिय है। और फिर द्रुपद महाराज पांचों के पास आए और हाथ जोड़कर उन्होंने याचना की कि कृपया बतलाइए आप लोग कौन है, मेरे हृदय में चिंता बढ़ती जा रही है, मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आप कौन हैं। और उस समय में युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया कि द्रुपद महाराज, आपका संशय ठीक है, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूँ, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल, ये सहदेव। और द्रुपद महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो विचार भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। और फिर उन्होंने उनको गले से लगाया। और फिर द्रुपद महाराज और पांडव काफी समय तक बैठे रहे। और द्रुपद महाराज ने कहा कि अब तुरंत ही, कल मुहूर्त बहुत अच्छा है तो तुरंत ही विवाह होना चाहिए, तो अर्जुन का विवाह कल करेंगे। अभी तक द्रुपद महाराज को पता नहीं था कि उनके ऊपर कितना भारी पत्थर फेंकने वाले हैं अभी युधिष्ठिर महाराज। तो कल अर्जुन का विवाह होगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हाँ ये तो सही है, लेकिन मैं बड़ा हूं तो मेरा भी विवाह होना चाहिए। तो पहले तो द्रुपद महाराज को लगा कि शायद युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी से विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये भी ठीक है, अगर आप द्रौपदी से विवाह करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, या फिर आप पांचों में से कोई, आप सब मेरे लिए समान है। वैसे एक दृष्टि से द्रुपद महाराज ठीक कह रहे थे, वो पांचों के लिए समान होने ही चाहिए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर उनके हृदय पर मारा, अर्थात उन्होंने कहा कि नहीं द्रुपद महाराज, पांचाली द्रौपदी हम पांचों की पत्नी बनेगी। द्रुपद महाराज ने इसको सुना तो बड़े अचंभित हो गए कि क्या कह रहे युधिष्ठिर, और वो भी युधिष्ठिर के मुख से ऐसा आ रहा। हाँ, कोई और कहता तो युधिष्ठिर को कहते कि देखिए कैसे अधर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब युधिष्ठिर कह रहे हैं तो वो धर्म ही होगा। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हुए और कहने लगे कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये तो अधर्म है, ये तो पाप है, कहीं सुना नहीं है, ना ही लोक नीति में इसको सुना है और ना ही वेदों में। ज्ञान पाने के या परंपरा को प्राप्त करने के दो मार्ग होते हैं, एक वैदिक मार्ग जो वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है, और दूसरा जो लोक रीति से चला आता है, परंपराएं, कुल परंपराएं, ये लोक रीति से चली आती हैं। तो द्रुपद महाराज ने कहा कि मैंने ना तो वेदों में इसका कहीं उल्लेख सुना है और ना ही लोक रीति में मैंने कहीं इसको सुना है कि ऐसा कहीं हुआ हो इतिहास में। तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पाप है। दृष्टद्युम्न भी वहां आया, वो कहने लगा युधिष्ठिर महाराज, इससे तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, ये कैसी बात है आपने कह दी। युधिष्ठिर ने कहा कि अगर ये मेरे हृदय ने स्वीकार किया है इस बात को, तो ये जान लो कि ये धर्म है। देखिए युधिष्ठिर महाराज को कितना अपने ऊपर विश्वास था, अहंकार नहीं था ये उनका, इसको अहंकार नहीं मानना चाहिए कि कितने अहंकारी हैं, कह रहे मैंने कहा है तो धर्म है। नहीं, उनको विश्वास था कि वो कभी अधर्म का पालन नहीं कर सकते, वो कभी अधर्म को कह नहीं सकते। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अगर ये मेरे हृदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि द्रौपदी हम पांचों की पत्नी बनेगी, तो ये धर्म है। द्रुपद महाराज ने कहा कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई, शास्त्र प्रमाण क्या है। देखिए पहले के लोग जब चर्चाएं किया करते थे तो शास्त्रों को, वेदों को बीच में लाते थे। हाँ, शास्त्र में प्रमाण है तो उस बात को मानना, अगर शास्त्र प्रमाण नहीं है तो बात को स्वीकार नहीं करते थे। युधिष्ठिर महाराज से पूछे, शास्त्र प्रमाण क्या है, आप कैसे कह रहे हैं, कहीं नहीं सुना है मैंने। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है, इतिहास में ऐसा हुआ है। एक गौतम गोत्र में या गौतम ऋषि के वंशज में एक युवती आई थी जिनका नाम था जटिला, और उन्होंने सप्त ऋषियों से विवाह किया, ये वर्णन आता है पुराणों में, युधिष्ठिर महाराज ने प्रकट किया कि जटिला ने सप्त ऋषियों से विवाह किया। तो उन्होंने तो सात लोगों से विवाह किया। दरअसल दृष्टद्युम्न उनको समझा रहा था कि शास्त्रों के अनुसार स्त्री को केवल एक व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, अगर एक पति के अलावा वो दूसरा स्वीकार करती है तो ठीक नहीं है, अधर्म है, पाप है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जटिला ने सप्त ऋषियों से विवाह किया, कुंडू ऋषि इनकी पुत्री जिनको वृक्षों ने पाला उसने प्रचेताओं से विवाह किया और वो दस थे, ये वर्णन भागवत में आता। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत शास्त्र प्रमाण दिया कि मैं जो कह रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं, अधर्म है, पाप है, मैं जो कह रहा हूं वो धर्म है। लेकिन फिर भी द्रुपद इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें और प्रमाण चाहिए था, उन्हें ये चाहिए था कि ये सत्य है कि नहीं। तो ऐसे समय में व्यासदेव वहां पर आते हैं और व्यासदेव को देखकर से प्रणाम करते हैं, उनको स्थान देते हैं बैठने का। और फिर जब व्यासदेव की पूजा इत्यादि हो चुकी होती है तब द्रुपद महाराज बड़ी नम्रता से उनसे पूछते हैं कि व्यासदेव ये कैसा संकट आया, यहां पर मेरी पुत्री है द्रौपदी जिसका विवाह होने वाला है, और ये युधिष्ठिर महाराज जो धर्म का पालन करने में कभी नहीं चूकते, ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि इन पांचों से द्रौपदी का विवाह होगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो व्यासदेव कहने लगे कि यही विधि का विधान है और यही होना निश्चित लिखा है। तो द्रुपद महाराज बड़े आश्चर्य में हो गए, कौन बोल रहे हैं, व्यासदेव, पहले युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्मराज और अब व्यासदेव जिन्होंने सारे वेदों को लिखा है, शास्त्रों को लिखा है, जो वेदों में शास्त्रों में स्त्री की स्थिति को बताते हैं, स्त्री के सतीत्व पर महत्व देते हैं, वो व्यासदेव कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये होना चाहिए, ये विधि का विधान है। तो फिर बड़े आश्चर्य में उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया इसे समझाइए। तो फिर व्यासदेव ने कहा मैं तुम्हें बतलाऊंगा लेकिन आपको अकेले में इस बात को समझाऊंगा। तो फिर उनको एक अलग स्थान पर ले जाते हैं और वहां पर व्यासदेव द्रौपदी का और पांडवों के इतिहास को वर्णन करते हैं।
कि पांडव कौन है और द्रौपदी कौन है, और न केवल इतिहास को वर्णन करते हैं, अकेले इसलिए ले गए थे कि द्रौपदी महाराज को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वो सत्य को देख सकते हैं। अब व्यासदेव एक प्रमाणिक गुरु हैं। व्यासदेव जब किसी बात को स्वीकार करते हैं तो उसको प्रमाण मानना चाहिए। अपने मन से हम किसी चीज को प्रमाण नहीं मान सकते। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे हृदय ने अगर इसको स्वीकार किया तो ये सत्य है, धर्म है। क्या हम अपनी स्थिति में ऐसा कह सकते हैं? एक बार बंबई में एक हत्यारा था जो रात्रि के समय लोगों के सड़क पे जो लोग सोते थे उनको पत्थर मारकर, उनको डंडा मारकर, उनका सर तोड़कर उनकी हत्याएं करता था। बड़ा भयानक तौर से ये बहुत फैल गया था। सारे लोग हैरान थे, कौन है ये व्यक्ति? रात्रि के समय कोई सड़क पर सो रहा है तो उसको हत्या कर देता था। कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई धन लूटना नहीं। तो जब बहुत समय बाद वो पकड़ा गया, कई हत्याएं कर चुका था, तो पुलिस वालों ने उससे पूछा जब उससे इंक्वायरी कर रहे थे कि तुम ये हत्याएं क्यों करते थे, तो उसने कहा कि मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान मुझे कहते थे हत्या करने के लिए। तो ये प्रमाण नहीं है। अपने मन में आई हुई बात को भगवान हमें ये कहते हैं, ऐसा नहीं। इस प्रमाण को एक अधिकारी के द्वारा स्थापित होना चाहिए। तो फिर व्यासदेव ने बहुत सुंदर तरीके से द्रुपद महाराज को, द्रौपदी और पांडवों के इतिहास को बतलाया। पहले द्रौपदी के इतिहास को बतलाया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं द्रौपदी कौन है? उन्होंने कहा कि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की पुत्री थी, लेकिन उससे पिछले जन्म में ये द्रौपदी कौन थी? तो बहुत सुंदर इतिहास का वो वर्णन करते हैं। देखिए, जब हम शास्त्रों की बातों को बाहरी दृष्टि से देखते हैं, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, तो हम उन्हें गलत मान सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति द्रौपदी के इस एक स्त्री के 5 विवाहों को, 5 पतियों को स्वीकार करना, इसको प्रमाण मानकर गलत कार्य कर सकते हैं। कह सकते हैं कि देखो, महाभारत में हुआ तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, महाभारत तो शास्त्रों का हिस्सा है। तो हम जब केवल बाहरी चीज देखते हैं, उसके रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करते, उसकी गहराई में नहीं जाते, या आचार्यों के द्वारा दी गई टीकाओं से उसको समझने का प्रयास नहीं करते, तो ऐसे में हम शास्त्रों को गलत दृष्टि से समझते हैं। इसीलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे कि हमें अगर कृष्ण कथा भी सुननी है, हरि कथा भी सुननी है, तो वैष्णवों के मुख से सुननी चाहिए। अवैष्णवों के मुख से अगर हम हरि कथा भी सुनते हैं, भले ही वो हरि कथा है, लेकिन वो इस समान होगी जैसे दूध को एक जहरीला सर्प स्पर्श कर दे, और जब उस दूध को हम पिएंगे तो जहरीला होगा। कई बार ये प्रश्न आता है कि हरि कथा तो हरि कथा है, कृष्ण का नाम तो शुद्ध करता है, तो फिर किसी के भी मुख से आए क्या फर्क पड़ता, वैष्णव हो अवैष्णव हो, कथा शुद्ध है, कृष्ण का नाम शुद्ध है। तो अगर इस कथा को, इस कृष्ण के नाम को हम अवैष्णवों के मुख से भी सुनते हैं, तो इसमें क्या गलती है? क्या कृष्ण का नाम दूषित हो जाता है? क्या कृष्ण कथा में दूषण आ जाता है? कृष्ण कथा तो भौतिक नहीं है, फिर दूषण कैसा? हाँ, ये सत्य है, कृष्ण कथा ये तो बड़ी शुद्ध है। जैसे दूध, दूध में कोई दूषण नहीं आएगा, दूध दूध ही रहेगा, लेकिन जब सर्प के मुख से स्पर्श होता है, तो फिर उसके मुख से स्पर्श हुआ हुआ दूध दिखने में दूध है, लेकिन जहरीला है, मृत्यु का कारण। इसी तरह हरि कथा जब वैष्णवों के मुख से आती है तो बड़ी शुद्ध है, मुक्त करने वाली है, आनंद देने वाली है, प्रेम प्रदान करने वाली है, लेकिन वही कथा दिखने में वही लगती है, सुनने में वही लगती है, लेकिन जब अवैष्णवों के मुख से स्पर्श होकर आती है तो उसमें जहर मिल जाता है और फिर वही कथा हमारे पतन का कारण बनती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक व्यक्ति भागवत पर प्रवचन कर रहे थे, मायावादी थे, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते थे और प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा भागवत में बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं भगवान से, लेकिन इन सारी प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है गजेंद्र की। तो लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्या है गजेंद्र की प्रार्थनाओं में जो अन्य प्रार्थनाओं में नहीं है? हम लोग तो पढ़ते हैं भक्ति की दृष्टि से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कितनी श्रेष्ठ है, शिव जी की प्रार्थनाएं, देवताओं की प्रार्थनाएं, तत्व दिया है उसमें भक्ति का, तो उनको श्रेष्ठ न मानकर ये कहना कि केवल गजेंद्र की प्रार्थनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, कारण क्या है? वो कहने लगे कि इन प्रार्थनाओं में भगवान के किसी एक रूप को संबोधित नहीं किया है इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। कुंती महारानी तो कृष्ण को संबोधित करती हैं, देवतागण कृष्ण को संबोधित करते हैं, तो देखिए ये व्यक्ति कह तो भागवत रहे थे, कृष्ण कथा कह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि सारे भगवान के रूपों में से सर्वश्रेष्ठ रूप निराकार है। तो जब ऐसे चीजें कोई हम लोग सुने तो स्वाभाविक है कि हम भी इन भावों में बह सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमें प्रमाणिक गुरु से ही कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, ऐसे अपने मन में आई हुई बात को भगवान का निर्देश नहीं मानना चाहिए। ऐसे तो हम लोगों के मन में न जाने कितनी बातें आती हैं। भक्ति में कभी कभी किसी व्यक्ति का पतन हो जाता है तो वो कहता है ये तो हरी इच्छा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हरी इच्छा से किसी व्यक्ति का भक्ति से पतन नहीं हो सकता, ये तो हमारी इच्छा है। हरी इच्छा का विरोध जब जीव करता है तब उसका पतन होता है। भगवान ने तो एक बहुत सुंदर योजना बनाई है हम सबको अपने धाम वापस ले जाने की, लेकिन जब हम उस योजना के विरुद्ध जाते हैं, अपने मन से कार्य करते हैं, अपने मन को महत्व देते हैं, तो फिर ऐसे समय में हमारा पतन होता है। तो ये हरी इच्छा नहीं है। हरी इच्छा है कि शास्त्रों के द्वारा नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य देह मिला है इसके द्वारा प्रवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, इतनी सुंदर नाव भगवान ने दी है, गुरु दिए हैं जो इस नाव को चलाने के लिए दक्ष हैं, तो ऐसी सुविधाओं के नाव ऐसी सुविधाओं के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति न तरेत स आत्महा, अगर वो इनका लाभ नहीं लेता है तो वो आत्मा का हत्यारा है भगवान कहते हैं। तो इसलिए भक्ति में जब हमारा पतन हो, जब हम भक्ति मार्ग को ठीक से पालन नहीं कर पाए, जब भक्ति में रुचि कम हो जाए, तो ये नहीं मानना चाहिए कि ये हरी इच्छा है, भगवान नहीं चाहते हैं इस जन्म में मैं वापस जाऊं, ठीक है अगले जन्म में प्रयास करेंगे, नहीं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम बड़ी गंभीरता से बड़े ध्यान पूर्वक 16 माला जप और 4 नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित है कि इसी जन्म में भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए हमें आचार्यों की इस वाणी को स्वीकारना चाहिए। तो फिर व्यासदेव प्रमाण देने लगे, इतिहास बताने लगे, कहने लगे कि एक समय ऐसा हुआ कि देवलोकों में इंद्र की पत्नी जिसे स्वर्ग लक्ष्मी भी कहते हैं, तो इंद्र की पत्नी वायु की पत्नी और अश्विन कुमारों की पत्नी और यमराज की पत्नी, इनके अलग अलग नाम हैं आगे हम वर्णन करेंगे, श्यामला भारती इत्यादि, तो ये पांचों स्त्रियां एक समय इनके मन में ऐसा विचार आया कि थोड़ा ब्रह्मा जी से हंसी मजाक करना चाहिए। तो पांचों स्त्रियां ब्रह्मा जी के पास गईं, लेकिन जाने से पहले ये पांचों स्त्रियों ने एक स्त्री के शरीर में प्रवेश कर लिया। थी पांच लेकिन एक हो गई, और ये पांचों क्योंकि ये शक्ति देवताओं में होती है सूक्ष्म रूप से, वहां पर सारी चीजें सूक्ष्म हैं, वहां कोई स्थूल चीज नहीं है, वहां का आनंद भी इस पृथ्वी के आनंद से कहीं ज्यादा है। तो फिर ये पांचों स्त्रियां, पांचों पत्नियां, एक इंद्र की पत्नी, वायु की पत्नी, अश्विन कुमारों की पत्नी और यम की पत्नी, ये पांचों पत्नियां एक शरीर में आई और फिर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से हंसी मजाक करने लगी, ब्रह्मा जी के साथ खिलवाड़ करने लगी। तो ब्रह्मा जी ने पहले सहन किया एक बार दो बार, लेकिन फिर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार तुम यहां खिलवाड़ कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर को भी कोई दूसरा पुरुष स्पर्श करेगा। तो ये तो एक सती स्त्री के लिए बहुत बड़ा श्राप है। तो फिर वो घबरा गए और उन्होंने याचना की, माफी मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो ये हो चुका है, तुम्हें तीन जन्म लेने पड़ेंगे और फिर तीसरे जन्म में तुम्हें ये जो श्राप है ये तुम्हारा पूरा होगा। और हाँ, ये मैं इतना बहुत तो बतलाता हूं कि तुम्हारे जो पति होंगे वो बड़े प्रतापी होंगे और बहुत प्रसिद्ध होंगे, तुम्हारा भी बहुत नाम होगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से श्राप मिला उन पांचों को जो एक ही शरीर में आई थी। फिर वही पांचों अगले जन्म में एक ऋषि की पुत्री बनी। तो एक पुत्री, लेकिन ये पांचों उसके शरीर में थी सूक्ष्म रूप से। और जिस समय शिवजी ने, ये कथा हम लोग जानते हैं कि उस पुत्री ने, ऋषि पुत्री ने शिवजी से प्रार्थना की एक सुंदर पति, एक शक्तिशाली पति पाने के लिए, तो बहुत कठोर तपस्या की। शिवजी प्रकट हुए, शिवजी ने पूछा क्या चाहिए मांगो। तो वैसे तो वो एक ही मुनि कन्या थी, लेकिन अंदर से पांचों स्त्रियों ने कहा कि हमें एक पति चाहिए, हमें एक सुंदर पति चाहिए, हमें एक सुंदर पति चाहिए। तो तुरंत शिवजी ने वरदान दिया कि तुम्हारे पांच पति होंगे। तो वो एक कन्या घबरा गई, अरे मैंने तो आपसे एक ही मांगा था, पांच क्यों दे दिए। तो शिव जी ने कहा तुमने पांच बार मुझसे मांगा है, इसीलिए मैंने पांच पति दिए हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सतीत्व बना रहेगा, ये मैं वरदान तुम्हें देता हूं। तो फिर अगले जन्म में वही ऋषि पुत्री द्रौपदी बनी। अब द्रौपदी के रूप में उन पांचों स्त्रियों के अंश इनमें थे, यम की पत्नी, इंद्र की पत्नी, वायु की पत्नी और अश्विन कुमारों की पत्नी, इन पांचों के अंश द्रौपदी में थे। और एक इतिहास व्यासदेव ने उस समय बतलाया द्रुपद को, वो था पांडवों का इतिहास। वो कहने लगे पांडवों को साधारण व्यक्ति मत समझो, ऐसा नहीं है कि केवल वो कुछ क्षत्रिय हैं। तो इतिहास बताने लगे, कहने लगे एक समय इंद्र और सारे देवता गण ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि हम बड़े चिंतित हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो जितने भी जीव हैं वो अमर हो रहे हैं, पृथ्वी तो मृत्यु लोक है, मर्त्य लोक। भगवद गीता में भी भगवान वर्णन करते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये जो पृथ्वी है ये मृत्यु लोक है। तो ऐसे मर्त्य लोक में तो जितने भी लोग रहते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसको भी भगवद गीता में भगवान बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे तो मरना ही है। देखिए अगर भगवद गीता के इन बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देशों को हम अपने जीवन में बड़ी गंभीरता से ग्रहण करें तो कितना सुखी हो जाए जीवन। ये एक एक संदेश, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, बस इतना ही, पूरा श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक भी नहीं, एक चौथाई केवल, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, ध्रुव यानी निश्चित है, ज जातस्य अर्थात जिसने जन्म लिया है उसके लिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो अगर हम अपने जीवन में इस आधे के आधे श्लोक को, एक चौथाई श्लोक को गंभीरता से उतारें, तो हमारी भोग प्रवृत्ति, हमारा द्वेष, हमारी आसक्ति सब चली जाएगी, क्योंकि हम जान जाएंगे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अरे मरना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, युधिष्ठिर महाराज ने ही आगे बतलाए, बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कि बहुत सारे लोग आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम्, इतने सारे लोग यम के लोक में जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कभी इस बात पर चिंता नहीं करते कि एक दिन मेरी भी मृत्यु आएगी। और हम सब भी सुनते हैं, हम सब भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्षण हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि हो सकता है अगले क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। कोई नहीं करता। ये भगवान के कृपा है, भगवान की माया शक्ति है, जो हमें ये सोचने नहीं देती कि हमारी मृत्यु होने वाली है। हम तो सोचते हैं अभी तो केवल 35 साल का हुआ हूँ, 40 साल का हुआ हूँ, 50 साल का हुआ हूँ, अभी केवल 60 का हुआ हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो बहुत लंबा जीवन पड़ा है। कोई नहीं सोचता कि हो सकता है अगले क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। आचार्य समझाते हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करें तो हमें इस भाव में रहना चाहिए कि हो सकता है अगले ही क्षण मेरी मृत्यु हो जाए, या फिर हमें सोचना चाहिए अगले क्षण मेरी मृत्यु होने ही वाली है, इसलिए बड़े ध्यान से भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस बात को बार बार सोच नहीं पाते। अपने जीवन में, अपने कार्यों में, दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। फिर कहीं कभी किसी की मृत्यु देखते हैं, शमशान में जाते हैं, व्यक्ति को जलता हुआ देखते हैं, तो थोड़ा सा मन में आता है, हाय शायद मुझे भी एक दिन मरना है। शायद वो भी नहीं आता है आजकल तो। आजकल केवल मन में ये आता है कि जल्दी से आग लगे ताकि जाऊं, मेरा अपॉइंटमेंट है, ये कहाँ अटका के रखा हुआ है। वो पंडित भी बार बार मंत्र बोले चला जा रहा है, बस बंद भी नहीं कर रहा है। अरे अब आदमी मर गया, मंत्र बोल के क्या फायदा है? मंत्र से जिंदा तो नहीं हो जाएगा। बेकार बोल ले, ठीक है, बस इतना लंबा मंत्र बोले चला जा रहा। तो आजकल तो ये भाव है, आजकल वो वैराग्य भी नहीं आता कि कभी देख कर हृदय में ऐसा आए, शमशान वैराग्य जिसको कहते हैं, कि कम से कम शमशान में तो ये भाव आए कि एक दिन मुझे भी जाना। नहीं होता। तो इसलिए इस भाव में अगर रहकर हम भक्ति करें, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इसको बार बार याद करें हर रोज। आप सबको इसको लिख लेना चाहिए और कहीं ऐसी जगह पर घर में चिपकाना चाहिए जहां आप रोज देखते रहते हैं, जहां आप आते जाते दरवाजे के ऊपर चिपका दीजिए, तो दरवाजा खोलते ही घर में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, घर का दरवाजा बाहर खोलते हुए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। बहुत अच्छा है, हर जगह लगाना चाहिए घर में, ताकि याद आता रहे, ताकि अच्छे से जप कर सकें हम लोग, भगवान का नाम ले सकें। तो फिर उन्होंने कहा, इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि लोग मर नहीं रहे हैं, अमर हो गए हैं। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अमर तो हम लोग हैं, देवता, हमें ज्यादा समय जीना है, लेकिन ये मृत्यु लोक के निवासी अगर अमर होने लगे तो सारा व्यवस्था नहीं चलेगी ठीक से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, दरअसल यमराज एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में वही यजमान है, तो इसलिए वो उठ नहीं सकते हैं। यज्ञ की दीक्षा ली है उन्होंने, हमें पहले भी कई बार समझाया है कि जब कोई यज्ञ करते हैं, जो प्रमुख व्यक्ति यजमान जो होते हैं, वो जब यज्ञ की दीक्षा ले लें तो फिर उनको उठना नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो उठ जाए तो यज्ञ पूरा नहीं होता। जब भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि के साथ गए थे उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो उस समय भी हम लोग इस वर्णन को सुनते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने फिर यज्ञ की दीक्षा ली और एक स्थान पर बैठ गए और फिर बहुत सारे असुर आए, राक्षस आए, उन्होंने सारे गंदगी फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन विश्वामित्र मुनि हिले नहीं क्योंकि उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली हुई थी। फिर भगवान श्री राम ने उन सबको मारा। तो ऐसे इसको कहते हैं यज्ञ की दीक्षा लेना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यमराज ये यजमान है, यज्ञ करा रहे हैं, तो इसलिए यज्ञ कराने के समय उठ नहीं सकते हैं, तो इसलिए थोड़े समय के लिए उनका काम बंद हो गया है। यमराज का काम है कि समय आने पर सबको ऊपर ले जाना यमलोक में या जहां भी जाना है। तो उन्होंने देखिए कितना अच्छा वातावरण होगा ना उस समय। अभी सब लोग कल्पना कर रहे हैं, अरे यमराज आज क्यों नहीं यज्ञ कर रहे जाकर कम से कम हमारे लाइफ टाइम में 40-50-100 साल यज्ञ करें बहुत अच्छा है, देवताओं के 100 साल यज्ञ करें, हम तो बने रहे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि वो यज्ञ कर रहे हैं तो थोड़े समय में उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और फिर से वो अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे, तो सारे जीव फिर से मरने लगेंगे, आप चिंता मत करो, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। तो खैर फिर इसको कहकर वो नीचे की ओर आए, हिमालय के पास थे, विचरण कर रहे थे इंद्र। तो इंद्र ने देखा कि नदी में एक स्वर्ण रंग का कमल है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यहाँ हिमालय में ये स्वर्ण रंग का कमल कहाँ से आ रहा है। तो देखा कि पीछे से आ रहा था, देखा तो पीछे और एक दो कमल है, तो एक साथ ऐसे आ रहे थे धीरे धीरे। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, इंद्र ने सोचा कि ये सोने के कमल तो यहां से आ रहे थे, वहां पीछे पीछे की ओर चलने लगा। चलते चलते एक स्थान पर आया जहां पर एक बहुत सुंदर युवती वो बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और एक आंसू गिरता था तो जैसे ही नदी में गिरता वहां पर स्वर्ण का कमल हो जाता। इंद्र ने तो पहली बार देखा तो चकरा गया, बोले ये तो स्वर्ग में भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे कैसे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये युवती कौन है, ये कमल ये सोने का कैसे, वो आंसू टपक रहे हैं और सोने का कमल। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सही भी है, सोना खरीदने के लिए आंसू तो टपकाने ही पड़ते हैं शास्त्रों में कुछ गलत नहीं दिया है अभी इतना महंगा भी हो रहा है ना, तो आंसू तो टपकाने पड़ेंगे तभी सोना मिलेगा। तो इंद्र ने देखा कि अरे ऐसा दृश्य तो मैंने स्वर्ग में भी नहीं देखा। तो इंद्र उस युवती के पास गए और इंद्र ने पूछा कि आप कौन हैं और यहां ऐसे बैठे हुए हैं, आंसू टपका रहे हैं, क्या बात है। तो उस स्त्री ने उनकी ओर देखा, क्या आप जानना चाहते हैं, कहा हाँ, तो आप मेरे साथ चलिए। तो वो चलने लगी और ऊपर की ओर। तो चलते चलते और इंद्र उसके पीछे पीछे चलते चलते एक स्थान पर आए जहां पर एक योगी सिद्धासन में बैठे हुए थे और एक स्त्री उनके साथ थी, एक स्त्री के साथ आनंद ले रहे थे। तो वो स्त्री के साथ मग्न थे, उन्होंने देखा नहीं इंद्र आए हैं। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया, इंद्र ने कहा अरे दुष्ट तुम कौन हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं इंद्र हूं, मैं देव लोकों का राजा हूं देवेंद्र, और मैं आया हूं और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, इतनी दृष्टता। तो जब इंद्र ने ऐसा कहा, देखिए वैसे अहंकार, इंद्र का अहंकार तो बहुत समय प्रकट हुआ है, गोवर्धन लीला में भी हम लोग देखते हैं कृष्ण को कहते हैं वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनः, बालक छोटा सा बहुत बोलता है, वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञानी है, अज्ञं पंडितमानिनः अपने आप को पंडित मान रहा है। कृष्णमर्त्यम उपाश्रित्यम, वो कहते हैं कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला बालक, मर्त्य लोक का बालक कृष्ण, इसका आश्रय लिया है, गोपामे चक्षुप्रियम, इसलिए सारे गोप मुझे बहुत अप्रिय हो गए। तो इंद्र को अहंकार, और यहां भी अहंकार हो गया कि मैं आया हूं देवेंद्र और ये व्यक्ति देख भी नहीं रहा है मेरी तरफ, कितना अहंकार हो जाता है ना पद का लोगों को। ये तो इस तरह है कि समझिए यहां पर चीफ मिनिस्टर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आए भारत के, या करना, यस जो वो तो बड़ी बात है, कोई एमएलए आ जाए, और एमएलए आकर यहाँ पर घूमे और पता चले कोई उसको देख ही नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं, चीफ मिनिस्टर आए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उसकी ओर, सब अपने अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। दरअसल इस्कॉन मंदिर में ऐसा हो सकता है, बाकी कहीं जगह नहीं हो सकता। तो चीफ मिनिस्टर आए तो कैसा लगेगा उसको, अरे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, कोई वैल्यू है कि नहीं। कृष्ण को भी लगता है ऐसा। वैसे सारी प्रवृत्तियां कृष्ण से ही आती हैं, हमारे अंदर जो भी है, हमारे अंदर क्रोध है वो भी कृष्ण से आता है, क्योंकि कृष्ण में क्रोध है, क्रोध में आकर मटकी फोड़ी थी ना उन्होंने, तो क्रोध है उनके अंदर। इसीलिए कृष्ण का और एक नाम है नारायण। नारायण शब्द का अर्थ होता है, नार शब्द का अर्थ होता है जितने भी जीव हैं, जीवों का समग्र, और नारा नार यन अयन, अयन शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो नारायण शब्द का अर्थ होता है ऐसे भगवान जिनसे मनुष्यों में नारों में सारी प्रवृत्तियां आती हैं, उसको नारायण कहते हैं। वैसे नारायण शब्द के कई अर्थ हैं, आचार्यों ने बहुत सारे अर्थ दिए हैं। नारायण शब्द का एक अर्थ ये भी है, नार अयन, अयन शब्द आश्रय को भी सूचित करता है। तो इस दृष्टि से नारायण शब्द का अर्थ हुआ ऐसे भगवान जो सभी जीवों के आश्रय हैं, परम आश्रय, उनको नारायण कहते हैं। नारायण ऐसे भी कहते हैं कि जो भगवान जो समस्त जीवों की प्रवृत्ति के स्रोत है, जिनसे सारे जीवों की प्रवृत्तियां आती हैं, क्रोध भी है, जो भी प्रवृत्ति हमारे अंदर है, हम प्रसन्न होते हैं हम दुखी होते हैं, ये सारी प्रवृत्तियां भगवान में है। हम क्रोध करते हैं भगवान क्रोध करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया, कृष्ण ने क्रोध किया, क्रोध प्रकट किया, तो उनसे ही आता, तो इसीलिए उनको नारायण कहते हैं। वैसे नारायण शब्द का और एक अर्थ भी है कि ऐसे भगवान जो अपने ही शरीर से निकले हुए दिव्य जल में अयन करते हैं, शयन करते हैं, उनको भी नारायण कहते हैं। तो नारायण शब्द के कई व्याख्याएं की गई हैं आचार्यों के द्वारा। तो फिर इंद्र कहने लगे, ये अहंकार इंद्र के अंदर इतना तीव्र है, और दरअसल इंद्र की स्थिति भी ऐसी है, देवेंद्र हैं और स्वर्ग लोकों में हैं, इतने भोगों के बीच में हैं, तो स्वाभाविक ही उनके अंदर अहंकार आ जाता है। भक्तों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जैसे देवेंद्र इतनी सुविधाओं में रहकर, भोगों में रहकर अहंकार की प्राप्ति करते हैं, ऐसे ही भक्त जब उनको भक्ति मार्ग में कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, कुछ मान प्रतिष्ठा पद मिल जाता है, तो उनमें भी अहंकार आ जाता है। इसलिए इस अहंकार को तोड़ना चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है दास दास दासानुदास, लेकिन ये बनना बड़ा कठिन है, इसको कहना ये बड़ा सरल है, थोड़े से शब्द है दास दास दासानुदास, लेकिन ये भावना ये बड़ी कठिन है हृदय में लाना। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों ये दिया हमें, क्यों इस शब्द को प्रकट किया, गोपी भरती उपद कमले हो दास दास दासानुदास, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि जब तक जीव के हृदय में अहंकार है, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, तो वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता, वो मेरे पास नहीं आ सकता। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है, कृष्ण और जीव के बीच में केवल अहंकार है, मिथ्या अहंकार, और मिथ्या अहंकार से सारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, मिथ्या अहंकार से जीव भोगों में लगता है, क्योंकि अपने आप को शरीर मानता है। अगर वो अपने आप को इस मिथ्या अहंकार से परे कर ले, तो फिर भगवान और जीव के बीच में कोई दूरी नहीं है, वैसे आज भी नहीं है, लेकिन हमने अपने मिथ्या अहंकार को बीच में रखा हुआ है, तो देख नहीं पा रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण तो आज भी यहीं है, कृष्ण तो आज भी चाहते हैं कि हम सब उनके संग में रहें, लेकिन केवल हमारा अहंकार उसे रोक देता है। तो कृष्ण और हमारे बीच में केवल एक चीज है, अहंकार। इसीलिए कनकदास ने कहा कि जब मैं गया तो जाऊंगा, तो ये मैं हमारे और कृष्ण के बीच में, और कृष्ण को प्रिय नहीं है चैतन्य महाप्रभु को, ये अहंकार प्रिय नहीं है। महाप्रभु रे भक्त गणे रो वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है न गौर भगवान। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं जब हम हृदय से वैराग्य को प्रकट करते हैं, जब हृदय में हम भोगों को प्रकट करते हैं, जब हृदय में हम इस जगत की आसक्तियों को बढ़ाते हैं, तीव्रता को प्रकट करते हैं, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। हम सुविधाएं देते हैं। अगर हम भक्ति में हैं, ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, हम भक्ति मार्ग में हैं और भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान के नाम का जप करते हुए अगर हम भगवान से भोग की सुविधाएं मांगते हैं तो भगवान प्रदान कर देंगे, क्योंकि हरि नाम ये चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, तो प्रदान कर देगा। इसलिए भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि भगवान से क्या मांगे, धन मांगे, आसक्तियां मांगे, रूप मांगे, भोग मांगे, या फिर भक्ति मांगे। इसलिए हम लोगों को भगवान से केवल भक्ति की याचना, उनकी सेवा की याचना करनी चाहिए, तब अहंकार टूटेगा। भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी है अपने आप को दास मानना। हम लोग मानते हैं दास, वो भी अहंकार से, मैं दास हूं वो भी अहंकार से। इसलिए हम लोगों को भावनाओं को, हृदय को बदलना होगा, इस पत्थर को कोमल बनाना होगा। तो इंद्र ने अहंकार से उसकी ओर देखा, जिस दासन में बैठे थे और पीठ थी उनकी ओर, तो उन्होंने मुंह घुमाया और केवल एक दृष्टि डाली इंद्र के ऊपर। इंद्र स्तब्ध हो गए, पत्थर हो गए, खड़े हो गए, हिल नहीं पाए। ये व्यक्ति थे शिव जी और वो पार्वती जी के साथ आनंद ले रहे थे। तो इसलिए जैसे ही शिव जी ने देखा क्रोध में, तो इंद्र हो या कोई भी हो, और फिर शिव जी ने इंद्र से कहा, इंद्र गिर गए प्राय, ऐसे स्तब्ध हो गए, गिर गए। और शिव जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है अपने देवेंद्र होने का, तुम अब योग्य नहीं हो इंद्र होने के। फिर उन्होंने उस युवती से कहा, वो जो सुंदर युवती इंद्र को वहां लेकर आई थी, कि इसको भी ले जाओ और बाकी इंद्रों के साथ रख दो। तो इंद्र का बाकी इंद्रों के साथ, ये पहली बार सुना था इंद्र ने। अभी तक तो वो सोचता था मैं अकेला ही हूं, मेरे जैसा दूसरा भगवान ने बनाया ही नहीं है ना, ऐसा लोग सोचते हैं ना। जब हर रोज सुबह अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो लोगों को यही बात मन में आती है कि भगवान ने मेरे जैसा सुंदर दूसरा किसी को नहीं बनाया होगा, देखो कितना अच्छा लगता है, आज बाल कितने स्टाइल में बनाए हैं। या फिर भगवान ने जब मुझे बनाया तो वो जो मोल्ड था वो तोड़ दिया ताकि दूसरा कोई नहीं बना पाए, भगवान एक ही बनाया है, मेरे जैसा तो एक ही है, होता है ना। हाँ देखिए बोल रहा होता है, झूठ नहीं बोलते भक्त, मैं बताया। तो ऐसा ही होता है, हर एक व्यक्ति को यही लगता है। व्यक्ति 20 साल का हो तो बड़ा सुंदर लगता है, 30 साल का हो तो भी वो अपने आप को सुंदर मानता है, 50 साल का तो भी सुंदर मानता है, 60 साल, 70 साल, अभी तो मैं जवान हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये अहंकार। तो इंद्र सोच रहे थे मैं अकेला ही हूं, तो शिव जी ने कहा ले जाओ उनको, उनको भी डालो गुफा में। तो वो ले गए, उससे ले गए, आइए आप भी आइए। तो अंदर गए तो देखा चार इंद्र और थे पहले से, और वो भी ऐसे ही पालतू कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं वहां पर, और ये भी पांचवें, चलो लाइन लग गई शिव जी के श्राप के कारण। तो ये पांचों इंद्र थे। और फिर इंद्र ने पूछा शिव जी से कि भाई ये क्या है, ये चारों कौन है, ये आप कहाँ ले आए हैं मुझे। तो फिर उन्होंने बताया कि ये चारों भी पिछले मनवंतरों में इंद्र थे और इनको भी अहंकार हो गया था, तो इनको भी तुम्हारी तरह मैं यहाँ पर ले आया हूँ, बांध कर रख दिया है पालतू कुत्ते की तरह, क्योंकि बड़ा अहंकार था इनका, अहंकार चूर करना है। लेकिन क्योंकि इन्होंने मेरे साथ मेरी कृपा प्राप्त की है, इसीलिए ये पांचों को मैं आशीर्वाद, पांचों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग आगे चलकर भगवान की लीला में भाग लेंगे और बड़े प्रसिद्ध होंगे, और आप में से एक उस पर विशेष कृपा होगी भगवान की, जो स्वयं नर का अंश है, नर नारायण ऋषि में से नर का अंश है, और वो थे अर्जुन। तो ये पांच इंद्र, ये पांचों पांडव बने, व्यासदेव ने बतलाया, और बतलाया ही नहीं, दिव्य दृष्टि दी जिसमें पांचों को द्रुपद महाराज देख सके कि कैसे थे वे, क्या ऐश्वर्य था उनका। तो उन्होंने कहा ये कोई और नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति हैं, पांचों इंद्र हैं, और इसीलिए इनसे तुम्हारी पुत्री का जो है विवाह होगा। और जो पुत्री तुम्हारी तुम्हारे सामने खड़ी है, दरअसल वो पांच स्त्रियों का अंश अवतार है, एक नहीं है। उसमें यम की पत्नी, इंद्र की पत्नी, वायु की पत्नी और अश्विनी कुमारों की पत्नियां, इन पांचों में। इसलिए तुम चिंता नहीं करो, शिव जी का आशीर्वाद भी है, तो ये विवाह होना ही है। तो फिर जब द्रुपद महाराज ने सुना, फिर उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, अब आप कहते हैं तो मैं इस बात को मानता हूँ और मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तो फिर अगले दिन सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज का विवाह हुआ, और फिर एक एक करके पांच दिन, पूरे पांच दिनों में पांचों भाइयों का विवाह हुआ, जिसके द्वारा द्रौपदी इन पांचों पांडवों की पत्नी बनी। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है ठीक है पांचों थी उसमें, लेकिन फिर भी एक स्त्री ने पांच पुरुषों के साथ संग किया ना, शास्त्रों के अनुसार गलत है। तो श्रीपद मध्वाचार्य इसको भी समझाते हैं, वो कहते हैं ये भी बड़ा सरल है समझने के, कोई जटिल समस्या नहीं है। मध्वाचार्य जी ने अपनी महाभारत की टीका में इसको बड़े सुंदर रीति से समझाया है कि कैसे इन पांचों पतियों के होते हुए भी द्रौपदी सती कहलाई, वो सती थी। दरअसल अगर शास्त्रों को देखें, जो शास्त्रों के ज्ञाता है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, केवल जो कि आचार्यों की टिप्पणी के आधार पर जिन्होंने शास्त्रों को नहीं समझा है, ऐसे लोग ये कहेंगे कि शास्त्र में लिखा है कि अगर एक स्त्री एक विवाह करती है तो ठीक है, उसके बाद अगर वो दूसरा तीसरा चौथा विवाह करती है तो उसको फिर अच्छा नहीं माना जाता, वो स्त्री फिर सम्मानित नहीं रहती। तो फिर यहां तो द्रौपदी, इसने पांच पांच पति स्वीकार किए, तो शास्त्र के अनुसार गलत है, जिसको दुर्योधन ने भी कहा था। जब दुर्योधन ने युद्ध क्रीड़ा हुई थी, जुआ खेला गया, और जब द्रौपदी को हार गए और द्रौपदी को लाया गया, बुलाया, तो द्रौपदी ने इनकार किया आने से, तो उस समय दुर्योधन ने ये कहा था कि अरे शास्त्र के अनुसार तुमने अपमानजनक बातें की हैं, अगर एक स्त्री इतने सारे पतियों को स्वीकार करती है तो वो सम्मानित नहीं है शास्त्र के अनुसार, तो अब क्यों आप वहां पर है? आपको बाहर आना चाहिए, क्यों अपमान आपको लग रहा है? तो दुर्योधन भी जानता था शास्त्रों को, ऐसा नहीं कि दुर्योधन शास्त्र नहीं जानता था। तो फिर शास्त्र के अनुसार तो गलत लग रहा है कि एक पत्नी और इतने सारे पति, अपराध है, पाप है, भले ही पांच थी ठीक है मान लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः तो गलत है। तो श्रीपद मध्वाचार्य अपनी महाभारत की टीका में इसको समझाते हैं, वो कहते हैं कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के साथ होती थी, तो युधिष्ठिर महाराज ये यम के अंश हैं, यमराज के अंश हैं, इसको हम सब जानते हैं। तो फिर ऐसे समय में जब द्रौपदी यमराज के अंश के साथ संग करती थी या रहती थी, तो फिर यम की पत्नी श्यामला का जो अंश उनमें था, वो अंश यम के अंश के साथ साथ रहते थे। और जब वो इंद्र के वान अंश अर्थात अर्जुन उनके साथ होती थी, तो फिर इंद्र की पत्नी स्वर्ग लक्ष्मी जिसे कहते हैं, उसका अंश इंद्र के अंश के साथ होता था। जब वो वायु अर्थात भीम के साथ होती, तो फिर उनमें जो वायु पत्नी भारती का अंश है, वो अंश वायु के अंश के साथ होता था सूक्ष्म रूप से। और इसी प्रकार जब वो नकुल और सहदेव के साथ होती, तो फिर अश्विन कुमारों की पत्नियों का अंश उनमें उनके अश्विन कुमारों के अंशों के साथ होता। तो इसीलिए क्योंकि यम की पत्नी यम के साथ, इंद्र की पत्नी इंद्र के साथ, वायु की पत्नी वायु के साथ, अश्विन कुमारों की पत्नी अश्विन कुमारों के साथ, तो मध्वाचार्य जी पूछते हैं इसमें क्या गलत है, न पांडवों ने कोई पाप किया न द्रौपदी ने, तो फिर कैसा पाप कैसा अधर्म। और इसीलिए द्रौपदी सती कहलाई, क्योंकि उसने केवल अपने पति के साथ संग किया, केवल ब्रह्मा जी का श्राप था इसीलिए पर पुरुष का स्पर्श हुआ, लेकिन संग उसने केवल अपने पति का किया, इसीलिए उसे सती कहते हैं। तो ये सूक्ष्म स्तर पर समझने वाली बातें हैं जिनको हम लोगों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए आचार्यों की टीका से, नहीं तो इतनी भ्रम में डालने वाली बातें हैं शास्त्रों में। जैसे कई बार लोग रामायण पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मांस खाया, ऐसा लिखा है, तो क्या ऐसा सत्य है, और अगर ऐसा है तो हम भी खा सकते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके एक शिष्य ने पूछा था, एक किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद हमने सुना है कि भगवान श्री राम ने मांस खाया, तो क्या ये सत्य है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर उन्होंने खाया भी हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तुम ये काम नहीं करना। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवद गीता में जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखलाया तो उनके मुख में सारे ब्राह्मण क्षत्रिय बड़े बड़े वीर वो सबको खा रहे थे, तो वो भी तो मांस था। तो जब वो खा सकते हैं उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर राम ने मांस खाया इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा लेकिन फिर भी ये सत्य नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी ने मांस खाया। दरअसल सुंदरकांड में वर्णन आता है, जब हमने भी ये पढ़ा था बहुत पहले चर्चा चल रही थी कि श्री राम ने मांस खाया लिखा है, तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा था कि हाँ ये बात थी कि भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा क्या प्रॉब्लम है, भगवान है वो, हम तो भगवान नहीं है, तो उन्होंने खा लिया तो क्या तकलीफ है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने समझा ये सत्य नहीं। तो हमने जब उसमें पढ़ा तो सुंदरकांड में एक श्लोक है जहां हनुमान जी और सीता देवी का संवाद है, जिस श्लोक को ये लोग आधार बनाते हैं ये कहने का कि श्री राम ने मांस खाया। तो उस श्लोक का अर्थ ये है, या वो लोग लगाते हैं, वे कहते हैं कि हनुमान जी सीता देवी को ये बतला रहे थे कि हे सीता देवी, आपके विरह में भगवान श्री राम ने, राघव ने मांस खाना छोड़ दिया, कंदमूल खाना छोड़ दिया। तो इस श्लोक को लोग बताते, देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि मांस खाना छोड़ दिया, मतलब खाते थे ना, ठीक है अभी छोड़ दिया है, विरह में छोड़ दिया है, इन खाते तो थे ना, क्लियर लिखा है आपकी रामायण में लिखा है, फिर आप कैसे कहते हो नहीं खाते। हनुमान जी ने ही सारी गड़बड़ कर दी, क्यों कहा, उन्होंने कहना नहीं चाहिए था। लेकिन जब उस श्लोक को हम लोग ठीक से पढ़ते हैं, उसका संधि विच्छेद ठीक से करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उस श्लोक का अर्थ ऐसा है, अलंकारिक भाषा है, उस भाषा में हनुमान जी सीता देवी को ये बतला रहे हैं कि हे सीते, आपके विरह में राघव ने कंदमूल खाना छोड़ दिया है, और किसी भी राघव ने मांस तो खाया ही नहीं। ये उस श्लोक का तात्पर्य, अर्थात हनुमान जी बतला रहे थे कि देखिए जंगल में, हनुमान जी अलंकारिक भाषा में ये बतला रहे थे कि जब से आपसे अलग हुए हैं भगवान श्री राम उपवास कर रहे हैं। लेकिन इसको अलंकारिक भाषा में कैसे कहा, हनुमान जी बतला रहे हैं कि जंगल में दो ही चीजें मिलती हैं खाने के लिए, एक कंदमूल और दूसरा प्राणी मांस, या तो हर हिरण को मारकर खाइए या फिर कंदमूल तोड़कर खाइए, और क्या मिलता है जंगल में। तो वो ये कहने लगे कि श्री राम जंगल में रहते हुए कंदमूल नहीं खा रहे हैं, और कोई भी राघव, अर्थात केवल श्री राम नहीं, उनके जितने भी वंशज हुए हैं उन्होंने तो कभी मांस खाया ही नहीं। तो वो कह रहे थे कि मांस वो खाते नहीं है, कंदमूल खाना छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने उपवास रखा है आपके विरह में। तो इसको हनुमान जी ने थोड़ी अलंकारिक भाषा में कह दिया, तो इसको आधार बनाते। तो देखिए कितनी गलत बातें हो जाती हैं अगर हम आचार्यों से, भक्तों से, प्रामाणिक तौर से इन शास्त्रों को समझने का प्रयास नहीं करें। तो इसी तरह द्रौपदी, द्रौपदी के इतिहास को ना जानते हुए, सत्यता को ना जानते हुए हम द्रौपदी पर आरोप नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उसने 5 पतियों के साथ अपना जीवन बिताया। नहीं, द्रौपदी सती है क्योंकि वो अंश अवतार हैं इन 5 स्त्रियों की, और उन 5 स्त्रियों के अंश अवतार अपने अपने पतियों के अंश अवतार के साथ में संग करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है, ये शास्त्रोचित है। और फिर साथ साथ वरदान भी था, शिवजी ने भी आशीर्वाद दिया था, तो उस कारण से भी इसको 5 पति तो होने ही थे। तो ये कारण है प्रमुख था जिसके द्वारा द्रौपदी को 5 पति स्वीकारने पड़े या उन्होंने स्वीकारे। तो एक श्राप के कारण हुआ, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण और शिव जी के आशीर्वाद के कारण। तो इस तरह से द्रौपदी का विवाह हुआ 5 पांडवों से। बहुत सारा धन द्रुपद महाराज ने दिया, हाथी, घोड़े, दासियां, उस समय ये प्रथा थी, तो बहुत सारा धन दिया। और फिर उस समय वहीं पर रहने लगे। और फिर अभी तक जितने भी जो राजा महाराजा थे वो वहां से गए नहीं थे, जिन्होंने युद्ध किया था कौरवों ने और आदि जितने भी राजा महाराजा थे वो अभी तक गए नहीं थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे ब्राह्मण है कौन। वो कह रहे थे कि द्रुपद महाराज ने गलत प्रथा प्रारंभ कर दी है। ऐसा कभी होता है कि क्षत्रियो के स्वयंवर में कोई ब्राह्मण स्वयंवर के से वधु को लेकर चला जाए? तो द्रुपद महाराज ने गलत प्रथा प्रारंभ की है, इनको सबक सिखाना चाहिए। तो उनको सबक सिखाने के लिए वहां रुके हुए थे। ब्राह्मण की हत्या तो कर नहीं सकते थे, क्षत्रियो का ये धर्म था कि वो ब्राह्मण हत्या नहीं करते थे। तो फिर जब ये विवाह हुआ तो सब लोगों में बात फैल गई कि ये लोग कोई और नहीं पांडव हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। तो सब जगह ये बात फैली, तो जितने भी राजा थे अन्य राजा बड़े प्रसन्न हुए, उनको अच्छा लगा कि अरे पांडव जीवित हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और उस समय सारे के सारे राजा धृतराष्ट्र को गाली देने लगे कि धृतराष्ट्र की सारी करतूत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना क्रूर राजा है, अपने ही भाई के पुत्रों को मरवा रहा है, इत्यादि इत्यादि। और जब ये समाचार वहां पर उपस्थित कौरवों को मिला, दुर्योधन को विशेष करके, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उसके मन की स्थिति क्या हुई होगी, कि उसको अचानक पता चला कि हाय पांडव जीवित हैं, हाँ पांडव जीवित हैं। तो बेचारे दुर्योधन विशेष करके बहुत जोर जोर से विलाप करने लगा, ऐसा वर्णन है महाभारत में, कि कहने लगा कि हाय देखो भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सारी चीजों में भाग्य ही श्रेष्ठ होता है, मैंने क्या क्या नहीं किया लेकिन भाग्य ने सदैव इनका ही साथ दिया, इनको बचा कर ले गया भाग्य। तो ऐसे वो विलाप करते हुए बड़े भारी हृदय से, दुखी मन से वापस हस्तिनापुर चला गया। अब हस्तिनापुर में ये समाचार विदुर को मिला कि पांडव जीवित हैं, वो तो जानते थे, और उनको खुशी इसलिए हुई कि उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया, द्रौपदी अब उनकी, और इतने बड़े परिवार में पांचाल नरेश से उनका संबंध स्थापित हुआ। तो फिर भागते हुए गए धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र को उन्होंने कहा, महाराज बहुत खुश खबर है। धृतराष्ट्र कभी खुश खबरी सुनी नहीं थी जब से पांडव आए थे। तो धृतराष्ट्र, क्या है जल्दी बताओ। उसने कहा, कुरु वंश में अभी समृद्धि हो गई है, कुरु वंश एक पांचाल जैसे मिशाल जो वंश है, नरेश है, उनसे संबंध स्थापित कर लिया है कुरु वंश ने, धृतराष्ट्र ने सोचा दुर्योधन ने जीत लिया है, गुरु वंश इन्होंने कहा नहीं, अभी तो पता ही नहीं था पांडव जी और विदुर भी बड़े चालाक थे, दोनों कुरु वंश है, दोनों सही कहा गलत नहीं कहा। तो बहुत प्रसन्न हो गया, तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया, दूतों को बुलाया और सोना बनाने वालों को बुलाया, जाओ हार बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तैयारियां करो, हम अभी जाएंगे पांचाल में, उनको लेकर आएंगे इत्यादि इत्यादि, बहुत प्रसन्न। और वहां पर उस समय दुर्योधन बेचारा हाय हाय करता हुआ वो आ रहा था। और यहाँ बहुत तो विदुर भी बोले नहीं, विदुर ने कहा ठीक है थोड़े दिन खुश रहने दो, थोड़े समय, अगर अभी बोल दूंगा तो सारी खुशी चली जाएगी। तो विदुर ने फिर कहा कि हाँ महाराज बड़ा खुशी का समय है, आप ऐसे ही खुश रहिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि कैसे दुर्योधन ने जीता द्रौपदी को। तो उस समय विदुर ने कहा ज्यादा हो गया, बताना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा महाराज द्रौपदी को दुर्योधन ने नहीं जीता, तो दुर्योधन ने नहीं जीता, शायद सोच रहे होंगे बाकी सौ में से कोई रहे होंगे, कर्ण या कोई और। तो फिर मैंने कहा महाराज विदुर ने बड़े प्रेम से कहा द्रौपदी को अर्जुन ने जीता। सब हमारे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए धृतराष्ट्र की क्या स्थिति हुई होगी अर्जुन ने। तो उस समय कर्ण और दुर्योधन वगैरह बाहर ही थे, तो अब विदुर से उन्होंने कहा धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र को बताया कि हाँ ये पांचों पांडव जीवित हैं, वो बच गए अग्नि में, उनको कुछ हुआ नहीं, वो निकल कर चले गए थे और अब उन्होंने विभाग किया है। तो फिर आगे बहुत सुंदर वर्णन है, दुर्योधन खड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि अब पिताजी क्या करेंगे, विदुर भी खड़े हैं कि अब पता चल गया क्या करना है, और अब धृतराष्ट्र भी ये जानते हैं कि विदुर हैं, अन्य लोग भी होंगे, अब मुझे कैसे आचरण करना चाहिए। तो कैसे उन्होंने आचरण किया और आगे की कथा हम लोग अगले मंगलवार को जारी रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।